नमस्कार भारत, तारीख 6 मई, दिन सोमवार। मैं हूँ मानसी दास। 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर आज होगा मतदान। जानेंगे कौन सी सीटें और कौन से मुद्दे हैं अहम।
मेनली तो देश की तरक्की और देश का विकास, थोड़ी सी बसें और चलवाएं।
बेरोजगारी, ये अफरा तफरी, ये परेशानी, आदमी के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं।
कोई पार्टी आ जाए, कोई काम नहीं करती है।
अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली,
महंगाई पे कंट्रोल करे,
पब्लिक का फायदा करने वाली सरकार हो, उसको मैं सपोर्ट करूँगा।
फणी तूफान के कारण अकेले पुरी में 21 लोगों की मौत।
इतना डिवास्टेशन है बियॉन्ड इमेजिनेशन। BSNL हैज बीन रिस्टोर्ड, काल तक ठीक हो जाएगा BSNL। सीवियर साइक्लोन है, सबको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
सुनवाएंगे वसतुल्ला खान की डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। भारतीय लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। इन 7 राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। रूस के एक यात्री विमान में आग लगने की वजह से कम 41 लोगों की मौत की खबर है। विमान में कुल 78 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। हादसे की जांच कर रही टीम का कहना है कि 78 में से सिर्फ 37 लोग ही जीवित बच सके हैं। विमान में आग लगने की वजह से इसे उड़ान भरने के महज आधे घंटे बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रूस की सरकारी विमानन कंपनी एरोफ्लोट ने कहा है कि विमान को तकनीकी वजहों से एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। हालांकि कंपनी ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। कथित तौर पर ये एक सुखोई सुपरजेट 100 विमान है जो मॉस्को के शेरमेत्येव हवाई अड्डे से मनसमांक जा रहा था। गजा पट्टी पर किए गए इसराइली हमले में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के कमांडर हमद अल खोदोरी की मौत हो गई है। इसराइल ने हमद पर फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के लिए ईरान से फंड इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। इसराइल का कहना है कि शुक्रवार से लेकर अब तक गजा की ओर से उसकी सीमा में लगभग 600 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनकी चपेट में आकर 4 इसराइली नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं इसराइल के जवाबी हमले में 20 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसराइल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इमैनुअल नाहशोन ने BBC को बताया कि इसराइली सेना ने हमास के कमांडर को क्यों निशाना बनाया।
We do whatever is necessary in order to make sure that our citizens can live in peace without this permanent threat of rockets.
हमारी जनता शांतिपूर्ण तरीके से जी सके, इसके लिए हम जो भी जरूरी होगा वो करते हैं। हम नहीं चाहते कि इसराइली नागरिक हमेशा गजा से आने वाले रॉकेटों के डर में जिएं। हमारे लिए आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। वो युद्ध को बढ़ाने के लिए ईरान से पैसे ला रहे हैं। हमास का इस्लामिक जिहाद ईरान के पैसों से फल फूल रहा है, इसलिए पैसे वाले शख्स को निशाना बनाकर हमने उनकी हम पर हमला करने की क्षमता कमजोर की है। इसराइली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इमैनुअल नाहशोन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता ख्वान गुआइदो ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो देश में व्याप्त सियासी गतिरोध को खत्म करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए गुआइदो ने अमेरिका से सैन्य मदद लेने की संभावना को भी खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस समय वेनेजुएला में सिर्फ रूस और क्यूबा का दखल है और दोनों ही मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सहायता कर रहे हैं। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए गैर जिम्मेदाराना योजनाएं छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहने को कहा है। हम अमेरिका और उसका समर्थन करने वालों से कहते हैं कि वो अपने गैर जिम्मेदारा योजनाओं को छोड़ दें और अंतर्राष्ट्रीय कायदों के दायरे में रहकर काम करें। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपना ही एक आदेश पलटते हुए कहा है कि देश में समलैंगिक और विवाहेतर संबंधों की वजह से किसी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। भारत के 7 राज्यों में 51 लोकसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। चुनाव के इस 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7-7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटें शामिल हैं। चलेंगे अलग अलग राज्यों में मौजूद हमारे सहयोगियों के पास, लेकिन पहले जानते हैं हाल उत्तर प्रदेश का। यहां जिन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं उनमें राजधानी लखनऊ समेत अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद जैसी चर्चित सीटें शामिल हैं। सीधे चलेंगे लखनऊ हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास, लेकिन पहले जानते हैं रायबरेली और अमेठी में लोगों के सामने इस बार मुद्दे कौन से हैं।
पापा तो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो जो पार्टी उसका फायदा करेगी तो हम लोग उसी पार्टी की तरफ हैं।
मेनली तो देश की तरक्की और देश का विकास, थोड़ी सी बसें और चलवाएं जो उनको देनी चाहिए और लोगों के लिए, यही सब मुद्दे हैं।
बेरोजगारी, ये अफरा तफरी, ये परेशानी, आदमी के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, जिंदगियां एकदम बिल्कुल आखिरी कगार पे पहुंच चुकी हैं, किसी का कुछ नहीं मतलब है,
कोई काम नहीं करता, कोई पार्टी आ जाए कोई काम नहीं करती है। अब इस समय ये केवल लेकिन राष्ट्रवाद को लेके बिना वजूल का जो काम किया था, जो विकास किया था, वो बात नहीं कर रहे हैं।
आप गांव में जाइए, जो गरीब वर्ग है, गरीब
वो बताएंगे कि कितना,
जिनको गैस मिली है, जिनके पास छप्पर फूस था, आज उनको पीएम आवास मिला है।
प्रधानमंत्री आवास तो हमेशा आते रहते हैं, जो भी शासन होगा सभी में आएंगे, कुछ में कम आएंगे, कुछ में ज्यादा आएंगे।
ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ मतदाता। समीर आत्मज मिश्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। समीर, कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, बताइए 5वें चरण के इस मतदान में उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कौन से वो बड़े नाम हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
जी मानसी, बिल्कुल सही आपने कहा, और जैसा आपने बताया कि 14 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, इनमें से 2 सीटें अमेठी और रायबरेली छोड़ दिया जाए तो 2014 में ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान रहा। ये सभी सीटें बड़ी, जिनको कई हॉट सीट्स कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अमेठी है, रायबरेली है और फैजाबाद, जहाँ पे अयोध्या आता है वो सीट फैजाबाद में है, इस समय वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौशाम्बी है जहाँ पे कुंडा जैसी विधानसभा आती है, बहुत तो उसकी अक्सर चर्चा होती है, बहुत सेंसिटिव सीट मानी जाती है। उसके अलावा बाराबंकी है और बहराइच है, इन सारी जगहों पर गोंडा है, तो ये सीटें जो बिल्कुल लखनऊ के आसपास की सीटें हैं और जो मध्य लखनऊ में आती हैं उन जगहों पर चुनाव हो रहा है। रायबरेली में आपको मालूम है कि कांग्रेस की संरक्षिका है, पूर्व अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, वो चुनाव लड़ रही हैं, और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से है। अमेठी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने टारगेट पे एक तरह से रखा था कि कोई भी कसर न छोड़ी जाए, कैसे भी वहां पे वो जीत हासिल कर लें। और आपको बताएं कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने आखिरी दिन उन्होंने वहां बहुत बड़ा रोड शो किया, तो ये मुख्य वहां पे उम्मीदवार हैं, जो चर्चित उम्मीदवार हैं और चर्चित सीटें हैं।
जी शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र। अब चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर और जानते हैं यहाँ के मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे क्या क्या हैं।
इस देश की सारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक किसानों के ऊपर डिपेंड है, और किसानों के लिए जब तक बेहतर योजनाएं नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होगा इस देश का।
अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, महिलाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली,
महंगाई पे कंट्रोल करें।
गवर्नमेंट सही चाहिए, सब लोगों को सुरक्षा चाहिए हम लोगों को, और व्यवस्था सही होना चाहिए, देश की प्रगति भी होना चाहिए और अपना भी प्रगति होना चाहिए, सुरक्षा चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए।
वाकई तंगी तो आई है नोटबंदी के वास्ते, तो बहुत हालत खराब हुई है, हर मतलब मिडिल क्लास है वो तो बहुत ही परेशान है, देखा जाए तो काम ही नहीं है अब इतने, सब काम धंधे ही नहीं है, बस वही है।
पब्लिक का फायदा करने वाली सरकार हो उसको मैं सपोर्ट करूंगा।
अपन तो यही चाह रहे हैं कि भाई सरकार अच्छी है, जिसमें हर चीज, हर आदमी के भला हो, और जिसमें महंगाई भी कम हो, हर चीज की व्यवस्था मिले, देश के भी प्रगति हो, और क्या चाहिए।
आपने सुनी राजस्थान के कुछ मतदाताओं की आवाज। अब सीधे चलते हैं जयपुर हमारे सहयोगी नारायण बारेठ के पास, जो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। नारायण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल सुन।
जी नारायण जी, तपते रेगिस्तान की किन सीटों पर आज है मतदान और किन उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा?
ये मतदान का दूसरा चरण है जिसमें पूर्वी और उत्तर राजस्थान के 12 सीटों पे घमासान मचा हुआ है। इसमें प्रमुख सीटें हैं जहां जयपुर ग्रामीण व राज्यवर्धन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनका मुकाबला ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा पूनिया से। इसी तरह एक और अहम सीट है बीकानेर उत्तरी राजस्थान में जहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कांग्रेस से सीधे मुकाबले में है। और एक नागौर सीट है जो किसान आंदोलन की धुरी समझा जाता है, वहाँ पे पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का मुकाबला अपनी ही बिरादरी के किसान जाति के हनुमान से है जो बीजेपी से अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। और इन चुनावों में दोनों पार्टियों ने 500 से ज़्यादा रैलियां और सभाएं की जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और तमाम दिग्गज नेता मतदाता को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। चूंकि इन लोकसभा चुनाव में 96 सीटें हैं विधानसभा की जिसमें अधिकांश पे आधी से ज्यादा पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा है और कांग्रेस को इन सीटों पे अधिकांश सीटों पे जीतने की उम्मीद है। दोनों पार्टियों ने दावा किया कि वो इसमें कामयाब होंगे। देखते हैं मतदाता किसके चेहरे पे विजय का तिलक लगाता है।
जी, जानकारी के लिए धन्यवाद नारायण बारेट। और अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मध्य प्रदेश जहां लोकसभा की 7 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। यहां खजुराहो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जिन्होंने वहां कुछ मतदाताओं से बात की।
सुबह सुबह का वक्त है यहाँ पर खजुराहो में, आप लोग वोट डालने के एकदम तैयार बैठे हैं लगता है?
तैयार है।
तो ये बताइए क्यों इस बार का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, कुछ मायने रखता है चुनाव इस बार?
अब राष्ट्रीय चुनाव है, मायने तो रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह से वोट डालने के लिए बैठे हैं सभी लोग।
तो ये तो बड़ी खूबसूरत प्यारी जगह है, यहाँ तो मुद्दे मुझे नहीं लगता कि बहुत खास होंगे कुछ?
नहीं, अब मुद्दे तो होंगे देखो।
अच्छा,
विकास के मुद्दे तो सभी जगह जरूरी है। अब कई चीजें हैं जैसे विकास की हैं, कई योजनाएं हैं, वो लागू हो गए, उनको लाभ मिले आदमी, बस यही मुद्दे है।
जी, सलमान जी के साथ अब हम सीधे बात करते हैं। मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियों का दबदबा रहा है। सलमान जी, आज यहाँ मतदाता कौन सी सीटों और किन उम्मीदवारों पर उनकी परीक्षा लेने वाले हैं?
देखिए, 7 सीटें हैं जो जिसमें से बुंदेलखंड की जिस सीट पे मैं हूँ, खजुराहो, यहाँ पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ। यहाँ लड़ाई बड़ी तगड़ी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 7 की 7 सीटें जो इस चुनाव में हैं वो सब बीजेपी के पास हैं, इसलिए बीजेपी के पास खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए बहुत कम है। और अब कितनी सीटें इसमें से बचा पाती है बीजेपी, ये बड़ी चुनौती है। यहाँ पर जो सीट है उस पर खड़ी हुई है यहाँ राजघराना, छतरपुर राजघराना जो है उस कविता सिंह है कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने एमपी जो सिटिंग एमपी थे नागेंद्र सिंह, उनका टिकट काट के विष्णुदत्त शर्मा को दिया है। तो लड़ाई यहाँ भी काफी रोचक है और बाकी की सीटों पे भी काफी रोचक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें से 7 की 7 सीटें दोबारा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बड़ी चुनौती है।
जी, शुक्रिया सलमान रावी। लोकसभा की 7 सीटें पश्चिम बंगाल में भी हैं, वहां भी आज मतदान होना है। बीते लोकसभा चुनावों में ये सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थीं, लेकिन इस बार यहां मुकाबला कड़ा है। यहां मतदान के तीसरे और चौथे चरण में पश्चिम बंगाल में काफी हिंसा भी हुई थी। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी पीएम तिवारी से और उनसे पूछा कि कौन सी सीटें कितनी अहम हैं।
2 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये उत्तर 24 परगना जिले में है, बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई। एक तो बनगांव सीट है, यहाँ मतुआ एक समुदाय है जो आजादी के बाद बांग्लादेश से आया था, वही निर्णायक है। और ये सीट अभी नई बनी है, 10 साल पहले परिसीमन के बाद 2009 में बनी थी और तब से तृणमूल जीत रही है। बीजेपी भी बीते 4-5 साल में कुछ पैठ बना रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे बीती फरवरी में, लेकिन अब ये समुदाय मतभेद है क्योंकि एक ही परिवार के 2 लोग मैदान में है। तृणमूल ने ममता ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने शांतनु ठाकुर को, और रिश्ते में यह दोनों चाची और भतीजे हैं। इसी तरह इसी जिले की बैरकपुर सीट भी काफी अहम है, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, और लेकिन बीजेपी ने तृणमूल के ही 4 बार विधायक रहे अर्जुन सिंह को उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया है।
और इन 7 सीटों पर मुद्दे कौन कौन से हैं जो अहम हैं?
घुसपैठ है सबसे बड़ा मुद्दा क्योंकि बांग्लादेश से लगी हुई है कई सीटें, और हिंदू शरणार्थियों का मुद्दा है जिनपे बीजेपी दांव खेल रही है, नागरिक संशोधन विधेयक के जरिए और एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को निकालने का। उसके अलावा तो पुराने मुद्दे, विकास और सड़कें और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दे, और खासकर बैरकपुर इलाके में जो जूट मिले हैं, किसी जमाने में सोना उगलती थी और कई कारखाने बंद हो रहे हैं इलाके में, डनलप है और लगातार सूची लंबी होती जा रही है। तो मेन मुद्दा यह है, बंद होती जूट मिले, दूसरे कल कारखाने।
जानकारी दे रहे थे पीएम तिवारी। पश्चिम बंगाल से आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां आज 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बात की पटना में मौजूद हमारी सहयोगी सीटू तिवारी से और उनसे जाना कि इस चरण में यहां किन अहम सीटों पर दांव लगा है।
देखिए, जो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है वो 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। 87 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, 82 उम्मीदवार हैं जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट या जिसपे सबकी नजर है वो सारण बनी हुई है। राजीव प्रताप रूढ़ी है बीजेपी की तरफ से और चंद्रिका राय है आरजेडी की तरफ से। चंद्रिका राय जो है वो तेज प्रताप यादव के ससुर भी है और चूंकि उनकी वैवाहिक स्थिति को लेकर के हम सब जानते हैं कि थोड़ा विवाद बना हुआ है, इसलिए उनके जो बयान है वो बेहद तल्ख भी है। लालू प्रसाद यादव की ये एक सीट रही है, 1977 में पहली बार यहीं से चुन करके वो सांसद बने थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सीट है वो हाजीपुर है। हाजीपुर जो है वो रामविलास पासवान की सीट है, कई दशक से रही है, 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीतते रहे। यहाँ से उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस खड़े हैं और शिवचंद्र राम जो है आरजेडी के, जो की कला संस्कृति मंत्री भी रहे थे, वो यहाँ से लड़े हैं। दोनों ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मधुबनी तीसरी इम्पोर्टेंट सीट है, जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। हुकुमदेव नारायण यादव जो की बीजेपी के सांसद, जिनके पास ये सीट है, उनके बेटे अशोक कुमार यादव इस सीट से लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में विकासशील इंसान पार्टी के बद्री नारायण पूर्वे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो सांसद और केंद्रीय मंत्री शकील अहमद हैं, उन्होंने सीट पर खड़े होकर के निर्दलीय अपनी दावेदारी करके इसको त्रिकोणीय कर दिया। इसके अलावा सीतामढ़ी से अर्जुन राय, सुनील कुमार पिंटू हैं और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सीट को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुजफ्फरपुर को, यही वजह है कि बहुत यहाँ पे मैसिव कैंपेनिंग जो है वो हुई है।
जानकारी दे रही थी पटना से सीटू तिवारी। आज झारखंड की 4 सीटों कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग में भी वोट डाले जाएंगे और वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 2 सीटों पर भी मतदान होगा। अब से थोड़ी देर पहले बीबीसी संवाददाता सिंधु वासिनी ने बात की बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और उनसे पूछा कि आज किन अहम सीटों पर यहाँ मतदान होना है।
पूरे देश में जो 543 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं उसमें अनंतनाग की सीट अकेली ऐसी सीट है जिसमें 3 चरणों में चुनाव करने पड़े हैं। 23 तारीख को तो अनंतनाग जिले में हुआ, 29 तारीख को कुलगाम में हुआ और आज जो हो रहा है वो पुलवामा और शोपियां में हो रहा है। और ये बता दूं आपको कि पिछले 4 वर्ष के दौरान पुलवामा और शोपियां बहुत ज्यादा संवेदनशील रहे हैं, जिस तरह से वहां घटनाएं घटी हैं। और आज जो चुनाव हो रहे हैं इससे सिर्फ 3 दिन पहले, अभी 3 तारीख को वहां पे एक झड़प हुई थी जिसमें 3 चरमपंथी मारे गए थे और उनका 4था है आज, इसलिए सुरक्षा का बहुत ही भारी बंदोबस्त किया गया है। अनंतनाग सीट के लिए हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी किस्मत आजमा रही हैं, हालांकि उनके मुकाबले में पहली बार चुनाव लड़ रहे हसनैन मसूदी हैं। लेकिन लद्दाख में जो सिनेरियो बन रहा है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साझे तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका समर्थन जो है इवन पीडीपी भी कर रही है और कई दूसरे दल भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, असगर करबलाई और सज्जाद हुसैन, उन पे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं।
जी, प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन पे ये चुनाव होंगे?
भाजपा जो है वो धारा 370 और धारा 35A को खत्म करना चाहती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब चुनाव मुहिम के दौरान ये बातें स्पष्ट कर दी हैं। सब पहली बार हो रहा है पिछले 30 वर्ष के दौरान कि ये चुनाव बिजली, पानी या सड़क के बजाय एक ऐसी चीज पे लड़े जा रहे हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरे जो रीजनल फोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि हम इन धाराओं को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम रही है पिछले चरणों के दौरान और इस बार भी ऐसी कोई आशा नहीं है कि पुलवामा और शोपियान में वोटिंग बड़े पैमाने में हो। हालांकि लद्दाख तो प्रभावित नहीं है ना अलगाववाद से और ना चरमपंथ से, वहां तो वोटिंग परसेंटेज ठीक होगी, लेकिन पुलवामा और शोपियान में बहुत कम परसेंटेज की आशंका।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज सुर्खियां क्या हैं। अखबारों के साथ सिंधु वासिनी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु, आज अखबारों में क्या है पहले पन्ने पर?
जाहिर है चुनावों की खबरें हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि भारतीय सेना ने मेजर लीतुल गोगोई को कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही पेंशन के लिए उनकी वरिष्ठता में 6 महीने की कटौती की है। और मेजर गोगोई वही हैं, उन्हें यह सज़ा कश्मीर में एक स्थानीय लड़की से दोस्ती करने, उसे होटल में लेकर जाने और स्थानीय लोगों से झगड़ा करने के लिए ये सज़ा दी गई है। और वो पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2017 में एक कश्मीरी युवक को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल बनाकर सेना की जीप में बांध दिया था और इसके लिए तब उन्हें सम्मानित भी किया था सेना प्रमुख ने। और फिलहाल उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, उसके बाद ये सज़ा सुनाई गई है। दूसरी रिपोर्ट भी टाइम्स ऑफ इंडिया से ही मानसी। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पूरी होने के बाद भी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जस्टिस गोगोई पर उनकी ही एक पूर्व जूनियर ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उसकी विभागीय जाँच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज इसकी जाँच भी कर रहे हैं और जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को भेजा जाएगा लेकिन सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसी मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में भी है। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक लेटर लिखा है जो समिति के सदस्य हैं और उन्होंने सुझाव दिया है कि इसमें कुछ बाहरी सदस्यों को शामिल किया जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई रिटायर्ड महिला जज। उन्होंने कुछ नाम भी सुझाए हैं जैसे जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस सुजाता मनोहर और जस्टिस रंजना देसाई। इसके अलावा एक खबर नवभारत टाइम्स में है कि केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया था एक रोड शो के दौरान, तो अब दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गई है। अगर कोई अब उन्हें माला पहनाना चाहेगा या हाथ मिलाना चाहेगा तो उसे सुरक्षा के घेरे से होकर गुजरना होगा।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद सिंधु वासिनी। ओडिशा में आए फणी चक्रवात तूफान में अकेले पुरी में ही अब तक 34 मौतों की खबर है और अकेले पुरी में 21 मौतों की खबर है। राज्य के कई हिस्सों से संपर्क अब भी टूटा हुआ है, बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाई है। पूरे राज्य में असंख्य बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर और मोबाइल टावर गिरे हैं। और इतनी मौतों के बारे में, जैसा कि हमने बताया आपको, पुरी में अकेले 21 मौतें हुई हैं। इतनी मौतों के बाद सामने आने के बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि बाकी हिस्सों में भी हताहतों की संख्या शायद बड़ी हो। इसी मुद्दे पर पुरी के जिला कलेक्टर ज्योति प्रकाश दास से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत कुमार पति ने।
बहुत बहुत डिवास्टेशन हुआ है एंटायर पूरी डिस्ट्रिक्ट एज ए होल इन डिफरेंट 11 ब्लॉक्स। हमने क्या किया था, पहले हमने जो प्री पोजिशनिंग किए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक फायर, रोड्राफ, NDRF एंड वी हैव कंसंट्रेटेड ऑन इवैक्यूएटिंग ऑलमोस्ट 1,45,000 पीपल। सो कैजुअल्टी मोस्टली द वल्नरेबल पॉकेट में शायद एक दो हुआ है, इन टोटो 21 कैजुअल्टीज।
पूरी में अभी घूम रहे थे, शहर में चारों ओर अंधेरा है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, घर में लोगों की पानी नहीं पहुंच रही है, टेलीफोन नेटवर्क भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसको बहाल करने के लिए क्या चल रही है?
देखिए, इतना डिवास्टेशन है बियॉन्ड इमेजिनेशन। कल तक ठीक हो जाएगा BSNL। लाइट में क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिसिटी का सीवियर डैमेज ट्रांसमिशन लाइन, सो वो थोड़ा टाइम लगेगा। अल्टरनेटिवली हमने जो आज का लाइट है वो कल भी किया था, आज शायद थोड़ा विजिट था वे भी लोगों, इसलिए देर हो गया। सो वो चल रहा है अभी इंस्टॉलेशन। सो कोशिश जारी है, इतना बड़ा सीवियर साइक्लोन है, सबको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर रहा है, अभी नेशनल हाईवे ओपन होने के बाद सब रिली फ्लो हो रहा है।
पूरी के जिला कलेक्टर ज्योति प्रकाश दास से बात कर रहे थे सुब्रत कुमार पति। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम पाकिस्तान से आने वाली वसुतुल्ला खान की डायरी का, रमजान के चांद को देखने का वैज्ञानिक चार्ट और रमजान का महीना। आज उनकी डायरी का विषय यही है।
आज शाम चांद नजर आ जाएगा और कल से रमजान शुरू हो जाएगा। सरकारी दफ्तरों में कल तक इसलिए काम नहीं हुआ क्योंकि गर्मी बहुत है, कल से इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोजा रख के काम कौन करता है। वैसे तो मैं रोजे को उपवास भी कह सकता हूँ, पर मेरे कई दोस्त बुरा मान सकते हैं क्योंकि रोजा मुसलमान रखते हैं और उपवास हिंदू। जो रोजा रखते हैं वो फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि फास्टिंग तो क्रिश्चियन करते हैं। यूं तो एक वर्ष में 12 चांद होते हैं, मगर इनमें से 10 चांद जनता देखती है और रमजान और ईद के चांद सिर्फ चांद देखने वाली कमेटी को नजर आते हैं। 1400 वर्ष पहले चूंकि विज्ञान नहीं था इसलिए चांद ज्ञान की मदद से देखा जाता था, पर आज पहली तारीख का चांद किस दिन किस समय नजर आएगा उसकी अगले 100 वर्ष तक की जंत्री बनाना संभव है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान को छोड़ के लगभग हर मुस्लिम देश में रमजान और ईद का एक ही चांद नजर आता है, और जो व्यक्ति सरकारी चांद से हटके दूसरा चांद देखने की कोशिश करे उसे सरकारें दिन में तारे दिखा देती हैं। वैसे तो चांद देखने का इस्लामी तरीका ये है कि उसे नंगी आंख से दिखाई देना चाहिए, मगर पहली तारीख के चांद की उम्र सिर्फ 20-25 मिनट ही होती है। पुराने जमाने में जब इतना प्रदूषण नहीं था तब रेगिस्तान में पहली का चांद हर कोई आसानी से देख सकता था, पर आज तो धुएं और धूल के कारण चांद तो रहा एक तरफ, खुद नीला आकाश देखना ही कठिन है। इसीलिए अब चांद देखने के लिए मौसम विभाग के साइंसी चार्ट और विमानों की मदद लेके ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। पर अपने उपमहाद्वीप में उलमा हजरात चांद देखने के लिए सिर्फ उस हद तक आधुनिक उपकरणों की मदद लेते हैं जहां तक चांद देखने का उनका हक खत्म ना हो। उन्हें चांद देखने के लिए किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पे अंग्रेज की बनाई लिफ्ट के जरिए पहुंचने या अंग्रेजी दूरबीन के इस्तेमाल में कोई आपत्ति नहीं, पर अंग्रेजों के बनाए मौसम विभाग की भविष्यवाणी और चांद के वैज्ञानिक चार्ट पे उनका बिल्कुल भी एतबार नहीं। एतबार कर लिया तो फिर चांद देखने के लिए मौलवी हजरात की जरूरत क्या रहेगी। जहां तक आम नागरिक का मामला है तो उसके लिए चांद देखना बिल्कुल जरूरी नहीं। जिस दिन लीमू 200 रुपए किलो की बजाय 450 रुपए और इफ्तारी के पकौड़ों का बेसन 150 रुपए किलो से उछल के 350 रुपए के पायदान पे पहुंच जाए, समझिए रमजान शुरू हो गया। यानी रमजान उस महीने को कहते हैं जिसमें रोजादार सवाब कमाए और दुकानदार धन।
मुस्तुल्ला खान की डायरी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब चलते चलते सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग का खिताब, तीसरी वरीयता हासिल। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने छठी वरीयता हासिल। हांगकांग के एंगस लॉन्ग को बेहद आसानी से 21-12, 21-13 से मात देकर अपने नाम किया। दूसरी तरफ महिला एकल वर्ग का खिताब गैर वरीयता हासिल। दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने छठी वरीयता हासिल। चीन की ली जुई रुई को 21-19, 21-15 से हरा कर जीता। और अब समीक्षा। आखिरकार 56 मैचों के बाद तय हुई आईपीएल 12 के प्लेऑफ की अंतिम चार टीमें। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन चौथी टीम हैदराबाद तो कोलकाता नाइट राइडर्स की मुंबई के हाथों करारी हार के बाद जीवन दान पाने में कामयाब रही। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
पार्टी टाइम जो है हैदराबाद में शुरू हो गई, क्योंकि हैदराबाद को भाई डिफॉल्ट प्लेऑफ में जगह मिल गई है। रॉबिन उथप्पा कोलकाता के लिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, लेकिन ना सिर्फ इस मैच में, इस सीजन में वो बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच नजर आए हैं।
दरअसल कल आईपीएल में प्लेऑफ से पहले आखिरी मैच में कोलकाता का सामना मुंबई से था, जहां उसे 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई ने जीत के लिए 134 रनों का लक्ष्य कप्तान रोहित शर्मा के नाबाद 55 और सूर्य कुमार यादव के नाबाद 46 रन की मदद से 16.1 ओवर में ही केवल एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 133 रन बनाए। करो या मरो वाले इस मुकाबले में क्रिस लिन ने तो 29 गेंदों पर 41 रन ठोक डाले, लेकिन रोबिन उथप्पा 47 गेंदों पर 40 रन बना सके। कोलकाता की हार से 12 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले ही चौथे स्थान पर रहने वाली हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिल गया। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को इससे पहले उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है और समा बदल सकता है। खैर, विलियमसन की उम्मीद रंग लाई। इससे पहले कल ही खेले गए पहले मैच में पंजाब ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया, लेकिन हार से ना तो चेन्नई को कोई नुकसान हुआ और ना जीत से पंजाब को कोई फायदा, क्योंकि चेन्नई पहले ही प्लेऑफ में थी और पंजाब बाहर। वैसे इस बार सबसे ज्यादा हैरान किया दिल्ली ने। शिखर धवन, अमित मिश्रा, ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर के दम पर दिल्ली छा गई। अब देखना है प्लेऑफ में कौन बाजी मारता है, जहां मंगलवार को क्वालिफायर में चेन्नई और मुंबई और बुधवार को एलिमिनेटर में दिल्ली का सामना हैदराबाद से होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
भारतीय लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। इन 7 राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। रूस के एक यात्री विमान में आग लगने की वजह से कम 41 लोगों की मौत की खबर है। गजा पट्टी पर किए गए इसराइली हमले में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के कमांडर हमद अल खुदोरी की मौत हो गई है।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी राज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।